پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے. ہمارا یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستان اور بھارت کے لیے, جبکہ دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر نشر ہو رہا ہے. ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر, جہاں آپ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. جبکہ اس پروگرام کو اس وقت ہمارے فیس بک پیجز پر بھی لائیو سنا جا سکتا ہے, جہاں آپ کو اس کا لائیو براڈ کاسٹ لنک دستیاب ہے. اور اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد مستقل طور پر ہر دم رواں ہے زندگی کے فیس بک پیجز پر پوسٹ کر دی جائے گی, جسے آپ کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے اور شیئر بھی کر سکیں گے. ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahaizindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameelvoaurdu. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان سے اعلیٰ تعلیم کے لیے یہاں امریکہ آنے والے دو فل برائٹ اسکالرز احمد احسن نواز اور عابس حیدر جعفری. دونوں کا تعلق لاہور پاکستان سے اور دونوں یہاں امریکہ کی پنسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں ریسرچ کے لیے آئے ہیں. احمد احسن نواز بائیو فنکشنلائزڈ الیکٹرو میکینیکل سسٹمز یا بائیو نیمس میں اپنی ڈاکٹریٹ مکمل کر چکے ہیں اور وہ بلڈ ٹیسٹ کا ایک ایسا آلہ ایجاد کر کے پاکستان لوٹ رہے ہیں جو موجودہ آلات کی نسبت انتہائی چھوٹا اور انتہائی سستا ہے, جسے عام آدمی بھی کسی ڈاکٹر کی مدد کے بغیر بآسانی استعمال کر سکے گا. ہمارے مہمان عابس حیدر جعفری نیورولوجی میں موٹر کنٹرول پر ریسرچ میں ماسٹرز کی 2 سالہ تعلیم کا آغاز کر رہے ہیں اور وہ پہلے پاکستانی ہوں گے جو فل برائٹ پروگرام کے تحت موٹر کنٹرول پر امریکہ میں ریسرچ کریں گے. ہمارے مہمانوں کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahaizindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameelvoaurdu. ہمارے دونوں مہمان ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون پر پنسلوینیا سے. تو پہلے تفصیل سے بات کریں گے پاکستان سے یہاں امریکہ آنے والے عابس حیدر جعفری سے, اور اس کے بعد بات ہوگی امریکہ سے تعلیم مکمل کر کے واپس پاکستان جانے والے فل برائٹر احمد احسن نواز سے. تو اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. گفتگو کا آغاز کریں گے عابس حیدر جعفری آپ سے. ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ فل برائٹ پروگرام جس کے تحت آپ یہاں پر آئے ہیں وہ ہے کیا, اور اس کے تحت آپ کو یہاں پر امریکہ میں آ کر کیا کیا سہولیات ملتی ہیں؟
جی, یہ ایک پاکستان میں ہمارے ایک یو ایس ایڈ ہے جس کی طرف سے امریکہ کی طرف سے ہمیں گرانٹ ملتی ہے. اس کے تحت یہاں پہ ایک پروگرام فل برائٹ پروگرام ہے, اس کے علاوہ ہم فری پروگرامز ہیں, اور اس یو ایس ایڈ کے تحت جو ہے مجھے یہاں پہ سلیکٹ کیا گیا ہے اور مجھے امریکہ کی پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں بھیجا گیا ہے. یہ ایک فلیگ شپ امریکن گورنمنٹ کا پروگرام ہے جو کہ بہت کمپیٹیٹو ہے اور ریگرس ہے. اس کی سلیکشن جو ہے وہ بہت کمپیٹیٹو ہوتی ہے, جس کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اکیڈیمک پروفائل کے اوپر میٹر کرتی ہیں, جس میں سب سے پہلے آپ کی اکیڈیمک ایکسیلنس, کہ آپ نے اپنی تعلیمی بیک گراؤنڈ میں کتنا اچھا آپ نے جو ہے پرفارم کر کے دکھایا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کی کمٹمنٹ ٹو کمیونٹی بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور آپ نے اپنی سوسائٹی کے لیے اور آپ نے اپنی کمیونٹی کے لیے کیا کام کیا ہے, یہ اس کے لیے بہت میٹر کرتا ہے.
تو یہ بتائیے کہ اس سال کتنے فل برائٹ اسٹوڈینٹس جو ہیں آپ کے ساتھ آئے اور کتنے لوگوں نے آپ کے ساتھ کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا؟
ہمارے ساتھ اس سال جو ہے جو اپلیکیشنز ریسیو ہوئی تھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کو یا ہمارے پروگرام ہولڈرز کو جو کہ اس کو رن کرتے ہیں, کوئی آئی تھنک 1500 to 2000 اپلیکیشن جو ہیں وہ ان کو ریسیو ہوئی تھیں
پورے پاکستان سے.
اور اس کے بعد جو ہے جس میں سے 300 لوگوں کو انٹرویو کے لیے کال کی گئی تھی, اور ان 300 میں سے 150 لوگ تقریباً, 150 لوگ, 160 لوگ تقریباً سلیکٹ کیے گئے ہیں, جن میں ماسٹرز کے لوگ جو ہیں وہ 120-130 ہیں اور باقی جو ہے وہ 30-40 پی ایچ ڈی کے لوگ ہیں.
اچھا, تو لیکن میڈیکل کے شعبے میں عام طور پر فل برائٹ اسکالرشپ میں لوگ آتے نہیں, تو کیا یہ اس دفعہ کا یہ خاص ہے یا اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے ان موضوعات پر لوگوں کو فل برائٹ اسٹوڈینٹس آتے رہے؟
جی, یہ بالکل آپ نے بہت ایک ایک اچھی بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ میڈیکل کے شعبے سے بہت کم لوگ فل برائٹ اسکالرشپ پہ آتے ہیں. زیادہ تر لوگ یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو ڈگریز میں آتے ہیں, انجینئرنگ میں آتے ہیں اور پبلک پالیسی کی ڈگریز ہیں ان میں آتے ہیں. جو میڈیکل میں لوگوں کے نہ آنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ امریکہ میں آنا چاہتے ہیں میڈیکل کے لوگ, وہ صرف کلینکل پریکٹس کے لیے آنا چاہتے ہیں اور کلینکل پریکٹس جو ہے وہ فل برائٹ اس کو آفر نہیں کرتی, نہ ہی کوئی اور امریکی ایجنسی جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ کلینکل پریکٹس کی اجازت دیتے ہیں اگر آپ نے یہاں کے ایگزامس پاس نہیں کیے ہوئے. تو میں ایک اکیڈیمک پروگرام میں آیا ہوں جو کہ ایک ریسرچ اورینٹیڈ پروگرام ہے, جس میں ہم ریسرچ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ ڈیزیز اور ڈس آرڈرز ہیں ان کا ہم پتہ لگاتے ہیں اور ان کے نئے نئے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس میں ہم انوینٹ کرتے ہیں اور ڈسکور کرتے ہیں. تو یہ ایک اکیڈیمک, اگر آپ اکیڈیمک پروگرام میں آنا چاہتے ہیں جو کہ ایک پی ایچ ڈی یا ماسٹر ہوتا ہے, تو اس میں کوئی بھی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ آ سکتا ہے. اور ہر سال آلدو کی تعداد بہت کم ہوتی ہے ان لوگوں کی جو کہ میڈیکل کے لیے آتے ہیں, لیکن ہر سال دو تین چار لوگ میڈیکل کی ڈگریز کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ بھی یہاں پہ آتے ہیں, لیکن وہ پیورلی اکیڈیمک کام کے لیے آتے ہیں, وہ کچھ نیا سیکھنے کے لیے آتے ہیں, کلینکل پریکٹس یہاں میں نہیں کر سکتے.
اچھا, تو آپ آئے ہیں اس سال موٹر کنٹرول پر ریسرچ کرنے کے لیے, اس کا کوئی تعلق پاکستان میں موٹر کنٹرول پر ریسرچ سے ہے یا یہ جنرلی یہاں پر ہو رہی تھی آپ کی اسٹیٹ یونیورسٹی میں, پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں؟
جی, پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی جو ہے یہاں پہ موٹر کنٹرول کی جو ریسرچ ہے یہ یو ایس اے میں رینک نمبر ون ہے, یہ ٹاپ رینک ہے یہاں پہ, اور پاکستان میں یہ ریسرچ بالکل بھی نہیں ہو رہی تھی. اور میرا انٹرسٹ اس میں اس لیے ڈیولپ ہوا کہ میں پاکستان میں بہت سے فالج اور پیرالیسس کے مریضوں کے ساتھ کام کر چکا تھا, اور جب میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا تب مجھے اس فیلڈ میں موٹر نیورولوجی میں جو ہے میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا, اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ اپلائی کیا اور مجھے یہاں پہ پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن آفر ہو گیا.
فل برائٹ اسٹوڈنٹ جب یہاں امریکہ میں آتا ہے تو اس کو کیا کیا سہولیات ملتی ہیں؟
ہماری ٹیوشن فیس یہاں پہ نہیں ہوتی, ہمیں یہاں پہ ہیلتھ انشورنس پرووائڈ کی جاتی ہے, اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ ایئر ٹکٹس پرووائڈ کی جاتے ہیں پاکستان آنے اور جانے کے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ منتھلی اسٹائپنڈ بھی ملتا ہے, جو کہ ہمیں اکنامیکلی یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی اس کی وجہ سے, اور ہم پوری طرح سے اپنی پڑھائی پہ توجہ دے سکتے ہیں.
تو آپ پہلی بار ملک سے باہر آئے ہیں؟
جی جی.
تو کلچرل شاک کیا لگا آپ کو؟
ہاں, میں بالکل نیا ہوں یہاں پہ, مجھے ابھی آئے ہوئے تقریباً دو مہینے ہوئے ہیں. تو جب میں یہاں پہ نیا نیا آیا تھا تو پہلے دو تین دن تو ہر چیز بہت ڈفرینٹ لگتی ہے اور آپ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, لیکن گریجولی آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا کلچرل شاک اور ہوم سکنس فیل ہوتی ہے, اسپیشلی ان لوگوں کو جو کہ اپنے شہر سے, اپنے گھر سے پہلی دفعہ باہر آتے ہیں یا اپنے ملک سے پہلی دفعہ کسی بڑے ملک میں یا ڈیولپڈ کنٹری میں آتے ہیں. تو کلچرل شاک مجھے یہاں پہ یہ لگا تھا کہ پہلی بات تو مجھے یہاں پہ ہوم سکنس تھی کافی, دوسرا یہ کہ یہاں پہ لوگوں کا رہن سہن, لوگوں کا کھانا, لوگوں کی زندگی عام طور پہ جس طرح وہ گزارتے ہیں وہ بالکل ہماری زندگی اور ہمارے کھانے ہمارے رہنے سے بالکل مختلف ہے. ایون کہ دے ڈرائیو آن دا ڈفرنٹ سائڈ آف دا روڈ, یہ دوسری طرف گاڑی چلاتے ہیں, اور وہی سمجھنے میں کافی مشکل ہوتی تھی کہ سڑک پہ گاڑی کہاں سے آ رہی ہے, تو ہم لیفٹ سائڈ پہ ڈرائیو کرتے ہیں اور یہ رائٹ سائڈ پہ ڈرائیو کرتے ہیں. تو یہ مسئلے تھوڑے
سب سے پہلا تو یہی کلچرل شاک لگا کہ کدھر کو چلنا ہے سڑک پر, سیدھے چلنا ہے؟
بالکل بالکل اس طرح ہی ہے جی, کہ پہلے سمجھ نہیں آتی تھی کہ سڑک کس طرح کراس کرنی ہے کیونکہ گاڑی کہیں سے بھی آ جاتی تھی. اور یہ ہے کہ کھانا بالکل مختلف تھا, لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے یہاں پہ وہ بالکل مختلف ہے. ہم اپنے ملک میں اپنے استاد کو سر کے نام سے بلاتے ہیں یا ان کے ساتھ صاحب لگاتے ہیں یا ان کو رسپیکٹ کے ساتھ بہت زیادہ بلاتے ہیں, یہاں پہ آپ اپنے ٹیچرز کو ان کے فرسٹ نیم سے بلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی بڑی چیز ڈفرینٹ تھی میرے لیے, اور بھی بہت سی چیزیں جو ڈفرینٹ تھیں ان کی وجہ سے کافی جو ہے آپ کو سٹارٹ میں یہاں پہ تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں سیٹل ڈاؤن ہونے میں.
اچھا, کھانے پینے کا کیسے ارینج کیا, کیونکہ یہاں بالکل مختلف کھانے ہیں, تو وہ آپ نے خود پکانا شروع کیا یا آپ بازار سے ہی کھا رہے ہیں ابھی تک؟
ہاں جی, یہ بڑا ایک یہاں پہ خاص طور پہ جس جگہ پہ میں ہوں یہ ایک چھوٹا سا کالج ٹاؤن ہے, یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی بہت کم ہے, نہ ہی کوئی یہاں پہ پاکستانی ریسٹورینٹ ہیں. تو کھانے کے لیے یہ ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں کھانا نہیں پکانا شروع پکایا تھا, تو اب میں نے آہستہ آہستہ جو ہے یہاں پہ کوکنگ بھی شروع کر دی ہے اور کھانا پکانا میں نے یہاں پہ شروع کر دیا ہے. اب میں اپنا کھانا جو ہے وہ خود بنا رہا ہوں, تو ان اے سینس یہ ایک بہتری ہے, ایک ڈیولپمنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو ہم کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہونا سیکھ لیتے ہیں, اور یہ فیوچر کے لیے ایک بڑی اچھی پرسنل گرومنگ ہے.
تو کیا کیا پکانا سیکھ لیا اور کس سے سیکھا؟
پکانا جی ابھی میں نے اتنا زیادہ تو نہیں سیکھا, میں نے جو ہے وہ اپنی امی سے سیکھا ہے. میں اپنی امی کو اسکائپ پہ لے لیتا ہوں اور پھر ان سے کچھ جو ہے وہ کھانے پکانے کی جو ترکیب ہوتی ہے وہ میں سیکھ لیتا ہوں, اور ایک دفعہ بنا کے رکھ لیتا ہوں ویکینڈ پہ, اور پھر اس کو کنزیوم کرتا ہوں پورا ہفتہ, کیونکہ یہاں پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس کہ آپ پاکستانی کھانا روز بنا سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی کھانے بنانے میں بہت دیر لگتی ہے, تو ہم ان کو جو ہے وہ ویکینڈ پہ بنا کے فریز کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد
اس کو کھا لیتے ہیں. اور دوسرے گھر کے جو کام کرنے پڑ رہے ہیں صفائی وغیرہ کے؟
ہاں جی, وہ بھی کام کرنے پڑ رہے ہیں. وہ بھی ایک کافی شروع میں کافی مشکلات ہوتی تھیں کہ ہر کام جو ہے وہ خود کرنا پڑتا تھا, لیکن اب آہستہ آہستہ یہاں پہ عادت ہوتی جا رہی ہے, اور تو وہ اس کا اتنا نہیں رہا. زیادہ وقت جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر ہی گزر جاتا ہے. صبح یہاں پہ آتے ہیں اور رات کو جو ہے وہ سونے کے لیے گھر واپس جاتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہے, اب ہر چیز جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ خود کرنی پڑتی ہے, جو کہ اچھی چیز ہے آپ کی پرسنل گروتھ کے لیے.
برائٹ اسکالر پروگرام ہے, یہ کلچرل ایکسچینج پروگرام بھی ہے, تو آپ نے یہاں پر آ کر اپنے پاکستان کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے یا متعارف کرانے کے لیے ابھی تک کچھ کیا ہے؟
ہاں جی, یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ فل برائٹ از ناٹ اونلی این اکیڈیمک پروگرام, بٹ فل برائٹ ایک کلچرل ایکسچینج پروگرام ہے, جس میں ہمیں اپنے کلچر کو یہاں پہ آ کے امریکی عوام کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے, اور اگر کوئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں دونوں قوموں کے درمیان میں تو ان کو دور کرنا ہوتا ہے. ابھی جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں نے اپنی یونیورسٹی کے گلوبل کنیکشن آفس سے رابطہ کیا ہے, اور میں نے ان کو کہا ہے کہ آئی ایم اے فل برائٹ اسکالر اور میں اپنا کلچر یہاں پہ ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہوں, تو اس میں آپ مجھے کوئی اگر ہیلپ کر سکتے ہیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. تو اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ مجھے انہوں نے ایک پروگرام ہے یہاں پہ جس میں آپ یہاں کے اسٹیٹ کالج جو یہاں کا شہر ہے اس کے چھوٹے چھوٹے اسکولس میں جاتے ہیں, اور اسکولس میں جا کے آپ بچوں کو اپنی کلچر اپنے ملک کے کلچر کے اوپر پاکستان کے اوپر پریزنٹیشنز دیتے ہیں. تو میں نے اس پروگرام میں اپنے آپ کو انرول کروایا ہے. پروگرام کے تحت مجھے بلائیں گے اور میرے سے ڈفرینٹ پریزنٹیشنز لیں گے پاکستان کے لیے, تو میں جا کے جو ہے ان بچوں کو یہ پریزنٹیشن دوں گا. یہ تو ایک فارمل طریقہ کار ہے جس سے آپ اپنے ملک کے کلچر کو دوسری عوام دوسرے ملک کے کلچر کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ متعارف کرواتے ہیں. ادروائز ہر دن ہر لمحہ ہر وقت ہم لوگ یہاں پہ پاکستان کے امبیسڈر ہیں, اور ہر کسی سے ملتے وقت ہم ان کو اپنا ہمارا کریکٹر اور ہماری جو گفتگو ہے اور ہمارا جو رہن سہن ہے اس سے ہم ان کو متعارف کرواتے رہتے ہیں. تو ان اے سینس چلتے پھرتے یہاں پہ پڑھتے ہوئے اور لوگوں سے ملتے ہوئے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ملک کو اور اپنے کلچر کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں, تاکہ ان لوگوں کو پاکستان کے بارے میں پتا چلتا رہے, کیونکہ کافی لوگوں کو یہاں پہ یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کہاں پہ موجود ہے. تو اس طرح سے میں ڈیلی بیسس پہ پاکستان کی ریپرزینٹیشن کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں.
اور یہاں کے کلچر کی آپ کو بتائیے کہ کیا کیا چیزیں ڈفرینٹ لگیں, کیا کیا کامن لگیں, کیا کیا اچھی لگیں, کیا اچھی نہیں لگی.
ہاں, یہاں کے کلچر کا یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بڑی وہ بہت لا کو فالو کرتے ہیں, اور بہت مطلب جو اپنے کام سے بہت کمیٹڈ ہیں, اگر وہ کام کر رہے ہیں تو وہ ایک بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور بہت اچھا رزلٹ پروڈیوس کرتے ہیں. یہ لوگوں کی بڑی اچھی بات ہے کہ یہ اپنے کام سے بہت کمیٹڈ ہیں. تھوڑی سی یہاں پہ جو مجھے تھوڑی سی بات بری لگی, یا بری نہیں کہہ سکتے, تو جو مجھے ڈفرینٹ لگی کہ وہ یہ تھی کہ یہاں پہ امریکہ میں زندگی آپ کی بہت مصروف ہے, اور ایک بہت آپ کی زندگی میں منڈائنگ ہے کہ آپ کو ڈیلی روٹین ہے آپ کی, اور آپ کے پاس کسی چیز کے لیے بھی یہاں پہ وقت نہیں ہے, اور یہاں پہ آپ کی جو سوشل لائف ہے وہ بہت کمپرومائزڈ ہو جاتی ہے آپ کے کام کی وجہ سے. یہ تھوڑا سا ایک جو ہے وہ ڈفرینس یہاں پہ موجود ہے. پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا, وہاں پہ لوگوں کے پاس کافی وقت ہوتا ہے, یہاں پہ لوگوں کے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہوتا.
اچھا, عابس حیدر جعفری, ہماری گفتگو ابھی جاری ہے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا, تو پہلے ایک بریک اور ہم باقی باتیں بعد میں کریں گے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہردم رواں ہے زندگی میں آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان سے اعلیٰ تعلیم کے لیے یہاں امریکہ آنے والے دو فل برائٹ اسکالرز احمد احسن نواز اور عابس حیدر جعفری. دونوں کا تعلق لاہور پاکستان سے, اور دونوں یہاں امریکہ کی پنسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں ریسرچ کے لیے آئے ہیں. احمد احسن نواز بائیو فنکشنلائزڈ الیکٹرو میکینیکل سسٹمز یا بائیو نیمس میں اپنی ڈاکٹریٹ مکمل کر چکے ہیں और वो ब्लड टेस्ट का एक ऐसा आला ईजाद करके पाकिस्तान लौट रहे हैं जो मौजूदा आलात की निस्बत इंतहाई छोटा और इंतहाई सस्ता है, जिसे आम आदमी भी किसी डॉक्टर की मदद के बगैर बआसानी इस्तेमाल कर सकेगा। हमारे मेहमान आबिस हैदर जाफरी न्यूरोलॉजी में मोटर कंट्रोल पर रिसर्च में मास्टर्स की 2 साला तालीम का आगाज कर रहे हैं और वो पहले पाकिस्तानी होंगे जो फुल ब्राइट प्रोग्राम के तहत मोटर कंट्रोल पर अमेरिका में रिसर्च करेंगे। हमारे मेहमानों के तस्वीरी तारुफ और इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेजेस पर सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/hardamrawahainzindagi और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasminjameelvoaurdu। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं टेलीफोन पर पेंसिल्वेनिया से। आबिस हैदर जाफरी, ये बताइए कि आप रिसर्च कर रहे हैं मोटर कंट्रोल पर, तो कोई स्पेसिफिक शोबे हैं इसके जिसमें आप काम करेंगे या रिसर्च करेंगे?
यहाँ पे बेशुमार किस्म की रिसर्चेस हो रही हैं मोटर कंट्रोल के अंदर भी, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये लोग स्पेशलिटीज के बाद सब स्पेशलिटीज में चले जाते हैं। तो अब मेरा जो अभी यहाँ पे काम होगा वो एक डिसऑर्डर है, ADHD एक्टिव हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, उसके पर मैं काम करूंगा। और उसके अलावा यहाँ पे फॉलेज के अंदर भी बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है, पार्किंसनिज्म एक डिजीज है जिसके अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पे रिसर्च की जा रही है। इस तरह ही डिफरेंट किस्म की मोटर कंट्रोल की या मोटर न्यूरोलॉजी की या न्यूरोसाइंस की जो डिजीजेज हैं यहाँ पे, उनके ऊपर काफी काम किया जा रहा है पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में। और इनके साथ एक मेडिकल स्कूल है जिसे हम पेन स्टेट हर्शी कहते हैं, वो भी अटैच है मेरे डिपार्टमेंट के साथ, या मेरा डिपार्टमेंट उसके साथ अटैच है, तो वहाँ से भी हमें काफी ज्यादा इसमें कोलैबोरेशन होती है रिसर्च के अंदर।
तो आप यहाँ जब 2 साल पढ़ लेंगे तो क्या इम्कान है कि आप वापस जाएंगे या यहाँ मजीद पढ़ेंगे?
जी हमारा यही हो, ये हमारे साथ हमारा अपनी गवर्नमेंट से वादा होता है कि हम यहाँ पे पढ़ने के बाद जो है वो पाकिस्तान को सर्व करने के लिए वापस जाएंगे, और हम 2 साल पाकिस्तान को यहाँ से वापस जाके सर्व करेंगे और वहाँ पे जाके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे।
तो आपने 2 साल के बाद हर सूरत वापस पाकिस्तान जाना है?
जी बिल्कुल, हमें 2 साल के बाद यहाँ से वापस जाना पड़ता है।
अच्छा, और जाकर आप क्या करेंगे वहाँ पाकिस्तान में? आपकी कोई जॉब ऑलरेडी वहाँ मौजूद है जिसे आप ज्वाइन करेंगे या कोई नई जॉब करेंगे?
नहीं, पाकिस्तान जाके जो है मैं वहाँ पे तालीम के लिए काम करूंगा, मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाऊंगा और एकेडमिक रिसर्च में ही वहाँ पे काम करूंगा फर्दर, और अपनी रिसर्च को यहाँ से कंटिन्यू रखूंगा और यहाँ के प्रोफेसर से ताल्लुक कोलैबोरेशन में जो है पाकिस्तान के अंदर अपनी यहाँ की स्टडीज है उनको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा।
लेकिन ये कि वहाँ आपकी इस वक्त कोई जॉब मौजूद नहीं है कि जिस पर आप जाकर फौरन ज्वाइन कर लेंगे?
जी नहीं, ये यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो तकरीबन इस तरह ही होते हैं कि वो अपनी जॉब्स वगैरह छोड़ के आते हैं, जब वो पाकिस्तान जाते हैं तो उनको दोबारा से जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है और वो वहाँ पे जाके बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश करते हैं।
अच्छा, लेकिन ये कोई श्योर नहीं होता कि जाते ही उनको जॉब मिल जाए?
श्योर नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो लोग यहाँ से बहुत ही अमेरिका की अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको फॉरेन ही जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर हो जाती हैं।
या यहीं से वो अप्लाई करके ही जाते हैं ताकि वहाँ जाते ही उनको मिल
जाए? बिल्कुल, यहाँ से भी लोग काफी अप्लाई कर देते हैं ताकि वहाँ पे जाके उनको जॉब में कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो अभी तो आपने सिर्फ आपको ट्रैफिक सिस्टम यहाँ का देखा, आपने जो देखने का मौका मिला, एजुकेशन सिस्टम वहीं तक जहाँ तक कि आपकी यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, और कोई यहाँ की तारीखी इमारत या कुछ सैर भी की, यहाँ के मकामात देखे जो तफरीही हैं?
यहाँ पे मेरी जो यूनिवर्सिटी है मैंने अभी तक सिर्फ इसी का टाउन देखा है। यहाँ ये यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट टॉप यूनिवर्सिटी है, और सबसे जो अभी मुझे यही बात बहुत अच्छी लगी है कि दुनिया का जो 4th बिगेस्ट फुटबॉल स्टेडियम है वो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में है, और ये अमेरिका का दूसरा बहुत बड़ा जो है अमेरिकन फुटबॉल का स्टेडियम है। यहाँ पे जब गेम्स होती हैं तो वो एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है और लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो अभी तो मैं यहाँ पे सिर्फ इनकी यूनिवर्सिटी टाउन की चीज़ें ही देख सका हूँ, लेकिन अभी हम लोगों का थैंक्सगिविंग में और विंटर ब्रेक में प्लान है कि हम अमेरिका के साउथ में जाएंगे या किसी और, यानी न्यूयॉर्क या शिकागो या बड़े शहरों में जाके हम वहाँ पे उनके जो तफरी मकामात हैं हम उनको वहाँ पे देखेंगे।
अच्छा, और अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि पेंसिल्वेनिया और लाहौर इनमें क्या चीज कॉमन है और क्या चीज बहुत डिफरेंट है, तो आप क्या कहेंगे?
हाँ जी, लाहौर और पेंसिल्वेनिया जिस जगह पे मैं हूँ ये बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है और जिस शहर में मैं रह रहा हूँ ये सिर्फ यूनिवर्सिटी टाउन है। यहाँ पे जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं वो रात को 9 बजे बंद हो जाते हैं और जो लोकल शॉप्स हैं वो 7 बजे बंद हो जाती हैं। लाहौर में पूरी रात आपको खाने के और बाजार और हर चीज जो है वो खुली रहती है, और लाहौर में हर वक्त बहुत गहमा गहमी होती है, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल कम्प्लीटली एक डिफरेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पे सारी पॉपुलेशन स्टूडेंट्स की है और लाहौर तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरह का शहर है। तो लाहौर का मिजाज में और इस शहर के मिजाज में बहुत फर्क है।
और मौसम?
मौसम में भी बहुत फर्क है, क्योंकि लाहौर में बहुत गर्मी है। पाकिस्तान में जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे अभी तक मैंने गर्मी को एक्सपीरियंस नहीं किया। यहाँ पे मौसम बहुत सर्द है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यहाँ पे बर्फबारी भी होती है, और इस बार ये इनकी रिपोर्ट्स हैं, पेशेंगोई है कि विंटर वुड बी वेरी हार्श, यहाँ पे बहुत सख्त बर्फबारी की तवक्को की जा रही है।
तो उस बर्फबारी के लिए भी आपको तैयार होना है?
हाँ जी, ये मेरी जिंदगी की पहली बर्फबारी होगी, तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और थोड़ा सा इंसान को डर भी होता है कि कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन होपफुली आई थिंक आई वुड एंजॉय इट।
बात करेंगे आपके पाकिस्तान में आपने कम्युनिटी वर्क बहुत किया, कुछ बताइए कि आप वहाँ एक फला वेलफेयर सोसाइटी की एक एनजीओ चला रहे थे, तो वो क्या करती है और इस वक्त वो क्या कर रही है जब आप यहाँ आ गए? तो
फला वेलफेयर सोसाइटी एक लोकल कम्युनिटी, जिस जगह पे मैं रहता था वहाँ के गरीब लोगों के लिए मेरे वाले साहब ने वो एक एनजीओ बनाई थी। वो एनजीओ उस लोकल कम्युनिटी के लिए काम कर रही थी। अब उस काम में वो क्या कर रहे थे कि हमने वहाँ पे मुख्तलिफ मेडिकल कैंप अरेंज करवाए, जिसमें जिसको मैं लीड कर रहा था, जिसको मैंने अपनी मेडिकल की टीम के साथ वहाँ पे अरेंज करवाया। दूसरा ये था कि लोकल कम्युनिटी में लोकल जो वहाँ की खवातीन थी जो काम नहीं कर रही थी, उनके लिए मेरे वाले साहब ने और हमारी एनजीओ ने दस्तकारी स्कूल जो है वहाँ पे बनाया, और एक एम्बुलेंस के लिए भी वहाँ पे कोशिशें की जा रही हैं जो कि एक लोकल कम्युनिटी के लिए वहाँ पे ली जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसमें ये है कि मैंने वहाँ के लोकल जो माइनॉरिटीज थी मैंने उनके साथ इंटरफेस सॉलिडेरिटी के लिए मैं चर्च में जाया करता था, और मैं उनके साथ जो है उनकी सेलिब्रेशंस में शरीक हुआ करता था मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से एज अ गुड विल जेस्टर टू शो इंटरफेस सॉलिडेरिटी विद देम, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी तक महदूद नहीं था, बल्कि हम हिंदू कम्युनिटी और जो सिख कम्युनिटी है उसको भी आउटरीच करने की कोशिश कर रहे थे।
तो इस वक्त जो स्टूडेंट्स या जो नौजवान हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनसे आप फुलब्राइट स्कॉलरशिप के बारे में कुछ कहना चाहें या कोई मैसेज देना चाहें यहाँ अब तक का जो आपका एक्सपीरियंस है?
हाँ, फुलब्राइट स्कॉलरशिप जो है वो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है अमेरिका का। अगर हम यहाँ पे किसी को अपनी यूनिवर्सिटी में या अमेरिका में किसी को बताते हैं कि हम फुल ब्राइट स्कॉलर हैं, तो हमें बहुत ही इज्जत की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि ये इस नाम के साथ एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट अटैच है। तो मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि हर मेहनती इंसान को जिसने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है और जिसने एकेडमिकली जिसकी एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग हैं और जिसकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है या प्रोफेशनल या पर्सनल बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग है, वो इस स्कॉलरशिप के लिए या दूसरी स्कॉलरशिप जो इस तरह की हैं उनके लिए जरूर अप्लाई करे, क्योंकि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आके हमें वो एक्सपीरियंस मिलते हैं जिनको शायद हम कभी भी पाकिस्तान में हासिल ना कर पाते, क्योंकि इस एक्सपीरियंस का कोई पैरेलल नहीं है आपके पास। इसलिए ये एक बहुत बेहतरीन और टॉप स्कॉलरशिप है जिसके लिए जितने भी जो लोग आना चाहते हैं यहाँ पे और जिनकी ख्वाहिश है कि वो समझते हैं कि वो इसके काबिल हैं, वो इसके लिए ज़रूर कोशिश करें।
तो कैसे कोशिश करें, कोई कहाँ कैसे अप्लाई करने का तरीका क्या होगा?
ये आपको पाकिस्तान के अंदर ही अप्लाई करना होता है, इसकी काफी ज्यादा शरायत हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान में प्रोग्राम्स होते रहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से। तो आप जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो इनकी वेबसाइट होती है usefp.com शायद, तो वहां से आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यह है कि जो लोग अलमनाए हैं वो भी बहुत इसमें हेल्प आउट करते हैं आपको अप्लाई करने में। तकरीबन ये हर यूनिवर्सिटी में ही इसके लिए सेमिनार अरेंज किए जाते हैं, तो कोशिश की जाए कि उन सेमिनार्स को अटेंड किया जाए, क्योंकि वो आपको डायरेक्शन देते हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए और इसमें अप्लाई करने के लिए।
तो कितना अरसा लग जाता है एक स्टूडेंट को अप्लाई करने के बाद यहाँ तक पहुँचने में?
ये एक काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसके अंदर काफी चीजों को देखा जाता है। तकरीबन आपको यहाँ पे अप्लाई करने के बाद 1 साल लगता है यहाँ पे अमरीका आने में।
बेहद शुक्रिया आबिस हैदर जाफरी। गुफ्तगू में अब हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम के दूसरे फुल ब्राइट स्कॉलर अहमद एहसन नवाज को, लेकिन पहले ये ब्रेक।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान से आला तालीम के लिए यहाँ अमरीका आने वाले दो फुल ब्राइट स्कॉलर्स अहमद एहसन नवाज और आबिस हैदर जाफरी। दोनों का ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से और दोनों यहाँ अमरीका की पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए आए हैं। अहमद एहसन नवाज बायो फंक्शनलाइज्ड इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स या बायो नेम्स में अपनी डॉक्टरेट मुकम्मल कर चुके हैं और वो ब्लड टेस्ट का एक ऐसा आला इजाद करके पाकिस्तान लौट रहे हैं जो मौजूदा आलात की निस्बत इंतहाई छोटा और इंतहाई सस्ता है, जिसे आम आदमी भी किसी डॉक्टर की मदद के बगैर बआसानी इस्तेमाल कर सकेगा। हमारे मेहमान आबिस हैदर जाफरी न्यूरोलॉजी में मोटर कंट्रोल पर रिसर्च में मास्टर्स की 2 साल तालीम का आगाज कर रहे हैं और वो पहले पाकिस्तानी होंगे जो फुल ब्राइट प्रोग्राम के तहत मोटर कंट्रोल पर अमेरिका में रिसर्च करेंगे। हमारे मेहमानों के तस्वीरी तारुफ और इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेजेस पर सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/hardamrawahaizindagi और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasminjameelvoaurdu। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं टेलीफोन पर पेंसिल्वेनिया से। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमारे दूसरे मेहमान अहमद एहसन नवाज, मुबारकबाद देते हैं उन्हें फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर अमेरिका में अपनी डॉक्टरेट मुकम्मल करने पर और ब्लड टेस्ट का एक ऐसा आला इजाद करने पर जो एक चवन्नी के सिक्के जितना है और जिसकी कीमत मार्केट में आने पर सिर्फ 10-15 रुपए होगी। तो अहमद एहसन नवाज, कुछ बताइए हमारे सुनने वालों को ब्लड टेस्ट के उस आले के बारे में जो फुल ब्राइट प्रोग्राम और कुछ दूसरी फंडिंग्स के साथ पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में आपने साइंसदानों की एक छोटी सी टीम की मदद से इजाद किया है जो देखने में इंतहाई छोटा यानी एक चवन्नी के सिक्के जितना है लेकिन काम वही करेगा जो उसकी निस्बत बहुत बड़े बड़े आलात और उसकी निस्बत बहुत ही महंगे आलात कर रही हैं। तो कुछ बताइए कि ये छोटा सा आला क्या है जो आपकी ज़ेर क़यादत एक छोटी सी टीम ने इजाद किया है।
बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मतलब अपने शेयर करने का मेरा काम जो है उसको शेयर करने का मौका दिया। इसमें यह है कि मेरा जो मेन एम है इस PhD में वो ये है कि दुनिया में ऐसे इलाके हैं जहां पर ये हेल्थ की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये बहुत महंगी हैं। उसकी वजह से जो मैं ऐसी डिवाइसेस बना रहा हूँ जिससे इंसान के खून का तज्जिया किया जा सकता है और उसको देखा जा सकता है कि इसमें क्या क्या बीमारियां हैं। और ये जो डिवाइसेस हम बना रहे हैं ये इस कदर सस्ती होंगी कि ये गांव वगैरह में सस्ते दामों पर बेची जा सकती हैं और एक दफा ये इस्तेमाल हो जाए तो उसके बाद आप इनको फेंक सकते हैं। तो क्योंकि बहुत सस्ती हैं डॉलर्स में ये 10 सेंट्स पे और मतलब रफली जो रुपए में 10 से 15 रुपए के करीब इनकी प्राइस होगी और एक गरीब आदमी जो है वो भी इसको उसी तरह इस्तेमाल कर सकता है जिस तरह एक अमीर आदमी है और बिल्कुल ये सस्ते दामों पर है। हमने एक ऐसी डिवाइसेस बनाई हैं मेरी PhD में जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें बहुत ही छोटे बाल के बराबर इंसान के बाल के बराबर या उससे कुछ मिलते जुलते उसकी जो है डायमेंशन है उसके मुताबिक जो इंसान का खून है उसमें से इस तरह के चैनल्स में से पास करते हैं कि वो उसका एनालिसिस कर सकते हैं उसका तजिया कर सकते हैं कि वो उसमें आया क्या बीमारियां हैं या उसमें कोई ट्यूमर है या नहीं है। तो इस लिहाज से हम जो है उसका तजिया कर सकते हैं क्योंकि इंसान की जो भी बीमारियां हैं वो खून के जरिए आप पता करवा सकते हैं कि जिस तरह एक खासतौर पर अफ्रीका वगैरह में एक बीमारी बहुत मतलब इस वक्त जो है वो राइज पर है जिसको एड्स कहते हैं। वो इंसान का जो खून है उसमें एक खास किस्म के सेल्स होते हैं खलियात होते हैं जो कि उनकी जो काउंट है उनकी जो मकदार है वो कम हो जाती है। तो मेरी जो डिवाइस जो हम बना रहे हैं उससे आप वो तजिया उसका कर सकते हैं कि मतलब कितनी कितनी कम हो गई है। अगर वो एक हद से ज्यादा कम हो गई है तो फिर डॉक्टर्स जो हैं वो आपको बता सकते हैं कि इसमें आपको ये दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। और ये इसलिए इतनी ज़रूरी है क्योंकि अगर ये डिवाइसेस आम हो जाएंगी तो एक इंसान जो है जो कि मतलब अपनी बीमारी के आखिरी स्टेज पर नहीं जाएगा उसको पहले ही अंदाज़ा हो जाएगा क्योंकि किसी भी बीमारी को अगर शुरू में पकड़ लिया जाए तो उसका आप बहुत आसानी से उसका जो है वो निस्बतन उसका आसानी से जो है वो इलाज कर सकते हैं बजाय कि अगर वो आखिरी स्टेज पर चली जाए।
अच्छा आप अकेले थे इसमें?
हाँ जी, मैं इसमें अकेला था. मेरे साथ और प्रोफेसर्स थे दूसरी यूनिवर्सिटीज के, जो कि मतलब गाइड भी करते थे मेरे अपने सुपरवाइजर के साथ.
अच्छा, लेकिन पूरी टीम कितनी थी जिसने ये आला बनाया है?
ये डिजाइन तो मैंने खुद किया है, और मेरे साथ एक और बंदे थे जिन्होंने मेरे साथ मतलब डायरेक्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट थी मेरे साथ डिजाइनिंग में, लेकिन वो ही वाज हियर विद, मतलब वो शुरू में थे मेरे साथ, उसके बाद वो ग्रेजुएट करके, तो मैंने ये सारा प्रोजेक्ट आगे खुद ही मूव किया. लेकिन हमारी पूरी टीम होती है, जिस तरह मेरे कुछ कंप्यूटर के रिजल्ट्स भी होते हैं, सिमुलेशन रिजल्ट्स उनको कहते हैं, तो वो उसमें हम आपस में एक टीम होती है जो कि एक काम एक बंदा करता है, लेकिन मेन काम जो है ड्राइविंग सीट पर एक बंदा होता है, जो कि इस प्रोजेक्ट के लिहाज से मैं था. तो फिर हमें काम आगे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ कि मेरे लिए जो फलाना काम है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड काम है, वो मेरा एक बंदा कर देगा, और फैब्रिकेशन का है वो दूसरा बंदा कर देगा. फिर मेन सारा जो काम है वो फिर मैं अपने हाथ से खुद करता हूँ.
तो जब ये अब ये आला बन गया, तो इसको इसकी कहीं किसी जर्नल्स में, जर्नल्स वगैरह में इसकी वो हुई, पब्लिसिटी हुई?
हाँ जी, इसके मतलब इस वक्त जो है वो तकरीबन टोटल मेरी पीएचडी के दौरान 17 पब्लिकेशंस हैं, लेकिन खास तौर पे सिर्फ इसी डिवाइस से रिलेटेड जो है वो इस वक्त 5 है.
अच्छा, वो 5 जो है वो कौन से जर्नल्स में शाये हुई?
वो इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल है, लैब ऑन अ चिप के नाम से, काफी अच्छा जर्नल है, काफी नामी गिरामी जर्नल है, उसमें ये पब्लिश किया. उस लैब, उस जर्नल का मोटो यही है कि लैब ऑन अ चिप, मतलब ये कि जो पहले आलात हुआ करते थे जो बड़ी लेबोरेटरी में होते थे, वो अब एक छोटी सी चिप में समो दिया उन्होंने, इसलिए इसका नाम, जर्नल का नाम भी लैब ऑन अ चिप है.
तो अब ये एक चिप है जिसमें, अच्छा, इस आले का नाम क्या है जो आपने ईजाद किया?
इसको हम कहते हैं फ्लो साइटोमेट्री डिवाइस. फ्लो का मतलब है मतलब फ्लो, जिसमें बहाव, और साइटो कहते हैं सेल को, और मेट्री कहते हैं मेजरमेंट को. तो ऐसा आला जिससे आप सेल्स को फ्लो में लाकर उनकी मेजरमेंट्स कर सकें, जो कि उनमें चेंजेस आई हैं, ठीक, तो उसको कहते हैं फ्लो साइटोमेट्री.
अच्छा, तो इस आले का नाम है
माइक्रोफ्लूइडिक फ्लो साइटोमेट्री. जी.
अच्छा.
जी, एक मैं मतलब जिस चीज पे मतलब अभी मैं काम कर रहा हूँ अपने यहाँ जाते वक्त, वो इसी मतलब मेरी जो मैंने आला बनाया है इसी को आगे, इसको एक्सपैंड करते हुए, अब मैं अपनी डिवाइस को यूज कर रहा हूँ जो नए मतलब नौजायदा बच्चे पैदा होते हैं, जो मतलब जो कह लें कि बिल्कुल रिसेंटली पैदा होते हैं. तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स कुछ वो उनका फॉरन ब्लड एनालिसिस करना होता है, लेकिन जब जो बच्चा है जब वो माँ के पेट में होता है, उसका जो इम्यून सिस्टम है ना, वो उस वक्त माँ पे डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो मतलब इस दुनिया में आता है, इस दुनिया में आता है, तो वो उसकी बॉडी के लिए ये दुनिया एक नई जगह है, तो उसके ऊपर हजारों लाखों की तादाद में वायरस अटैक करते हैं, तो डॉक्टर्स फौरन उसका ब्लड टेस्ट करते हैं. लेकिन अब बच्चा जो है उसकी एक्यूट कंडीशंस में, क्रिटिकल कंडीशंस में, उसके अंदर ज्यादा खून नहीं होता, और तो ये जो डिवाइस है इसका एक बड़ा फायदा ये है कि ये बिल्कुल एक ब्लड का ड्रॉप लेती है और वही सारा एनालिसिस कर देती है जो कि आमतौर पर डॉक्टर्स जो है पूरी सिरिंज के मुताबिक निकाल लेते हैं ब्लड. अब आपको वो निकालने की जरूरत नहीं है, ये इस डिवाइस का एक बहुत बड़ा फायदा है.
तो किस तरह इस डिवाइस को बस लगा देंगे बॉडी से और वो टेस्ट कर देगी?
नहीं, मतलब एक खून का एक बिल्कुल छोटा सा कतरा, जिसको हम मतलब साइंटिफिक टर्म्स में माइक्रोलीटर्स कहते हैं, माइक्रोलीटर्स, तो जिसमें एक मिलीलीटर है, एक मिलीलीटर है उसमें हजार माइक्रोलीटर होते हैं, तो आपको एक माइक्रोलीटर सिर्फ या दो माइक्रोलीटर सिर्फ ब्लड चाहिए, एक कतरा बिल्कुल, और वो आप इस डिवाइस के अंदर इंजेक्ट कर देंगे और वो फिर अपना एनालिसिस खुद ही कर लेंगे.
आले की कोई फोटो वगैरह है?
जी बिल्कुल है.
तो हम इस आले की फोटो अपने प्रोग्राम हरदम रवायत जिंदगी के सुनने वालों के लिए अपने फेसबुक पेजेस पर पोस्ट कर देंगे, ताकि उन्हें अंदाजा हो कि अहमद एहसन नवाज ने क्या डिवाइस बनाई है, क्या आला बनाया है, और जल्द ही वो आला नहीं तो कम से कम उससे मिलता जुलता एक आला ये इन्वेंट करेंगे पाकिस्तान में आकर, जो सिर्फ 10-15 रुपए में मिल जाएगा. अच्छा, वो सिर्फ डॉक्टर्स इस्तेमाल कर सकेंगे या कोई और आम लोग भी इस्तेमाल कर सकेंगे?
इस पूरे प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि एक ऐसी डिवाइस बनाई जाए जो कि लैब से बाहर जाए, ताकि लोग खुद से इस्तेमाल कर सकें. तो मेरा एम इमीडिएटली, अगर ऐसा ना हो सका तो इन द फ्यूचर हम ऐसे इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि ये लोगों के हाथ तक पहुंचे और लोग खुद इसको इस्तेमाल करें. और अभी जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको अपने डिवाइस की आले की तस्वीर भेजूंगा, इसका मैं साइज का आपको बताना चाहता हूँ, जो मतलब एक चवानी है उसके साइज के मुताबिक है ये. जो पहले इस तरह की डिवाइस थी, बड़ा आला था जो इसी किस्म का, जो कि तकरीबन उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 500,000 dollars थी उसकी प्राइस. तो अब उसको श्रिंक करके ना सिर्फ साइज, ना सिर्फ उसकी कॉस्ट, ना सिर्फ उसका जो कीमत है, उसको हर चीज को श्रिंक करके एक छोटी सी चिप में ले आए और उसका साइज जो है वो एक जवानी के बराबर है. कॉइन जिसको हम यूएस क्वार्टर कह लें या पाकिस्तान में 50 पैसे के मुताबिक उसका साइज है. तो मतलब जो मैं आपको तस्वीर भेजूंगा उसमें वो उसका कॉइन जो है वो खुद मैंने तस्वीर उतारी है डिवाइस के साथ एक कॉइन रख के, ताकि लोगों को ये अंदाजा हो सके कि ये किस कदर छोटी डिवाइस है. मैं एक यहाँ पे मिसाल देना चाहूंगा अपनी ये जो बात मैंने अभी की इसको एलैबोरेट करने के लिए. जो मतलब मेरी डिवाइस है जो मैं चीज बनाई है अपनी इसमें पीएचडी के दौरान, वो ऐसी डिवाइस है जिस तरह एक मुल्क का एक निजाम होता है, आर्मी होती है, जो कि एक्सटर्नल खतरों से बचाती है, मुल्क को बचाती है. बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे खून में ऐसे खुलियात या सेल्स डाले हैं जो कि एक आर्मी का काम करते हैं. अगर उनकी मिकदार कम हो जाए तो आपका इम्यून सिस्टम, जिसको कहना चाहिए बचाव का तरीका जो है, बचाव का सिस्टम हल्का हो जाता है और इंसान जल्दी बीमारियां पकड़ लेता है. तो उसी तरह ही मैं जो इंसान का जो है वो सिस्टम भी ऐसा ही है, और मेरी डिवाइस जो है वो ये उसका तजिया करके मेरा डॉक्टर उसको बताएगी कि ये उसका स्टेटस है. लेकिन ये डिवाइस इतनी सस्ती है कि ये वो टेस्ट जो कि लाखों करोड़ों के टेस्ट होते थे वो अब कुछ 100 या कुछ 10-15 रुपए के आप वो टेस्ट कर सकेंगे. और इसकी एक मिसाल बड़ी सिंपल सी है, जिस तरह पहले आज से 10 या 15 साल पहले ये शुगर टेस्टिंग जो है, दिस वॉज समथिंग, ये एक बड़ी मुश्किल चीज समझी जाती थी. आप डॉक्टर्स के यहाँ जाते थे और वहां से वो आपको लैब को रिकमेंड करते थे, फिर लैब पे जाते थे, अपना खून देते थे और काफी ज्यादा मिकदार में खून दिया जाता था, और फिर आपको तकरीबन महीने, एक महीने, 15 दिन से महीने तक आपको रिजल्ट मिलते थे. अब उस टाइम को हम खत्म करना चाह रहे हैं. हम चाहते हैं जिस तरह शुगर टेस्टिंग डिवाइस आप अपने घर बैठे हुए या अपने ऑफिस में बैठे हुए बिल्कुल अपनी जेब से निकालकर अपना शुगर लेवल देख सकते हैं, और आपको इतना भी पता है कि इतने शुगर लेवल पे मुझको इतनी इंसुलिन इंजेक्ट करके अपने आप को जो है वो हेल्दी डेली एक्टिविटीज के लिए मतलब वापस लाना है. इसी तरह ये डिवाइस भी आपको बताएगी कि आपको शुगर कितना चाहिए, आपको आपके आपका इम्यून सिस्टम, आपका जो बचाव का सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है, कि आपको फलानी दवाई लेनी है मलेरिया के खिलाफ या पोलियो के खिलाफ. ये सारी चीजें एक ही डिवाइस में आप कर सकते हैं.
अच्छा, तो ये जो डिवाइस आपने बनाई है इस पर आपकी जो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी है उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है इस डिवाइस को बनाने में?
इन्होंने ये पिछले NIH से भी फंडेड था ये प्रोजेक्ट. काफी ये इसके लिए हमें तकरीबन ऑलमोस्ट $1 million NIH से मिले थे तकरीबन आज से 3 से 4 साल पहले. लेकिन और उसी लिहाज से उसी के दौरान इन सारे काम करने के दौरान मेरे 2 US patents भी बने हैं इसी डिवाइस पर.
तो अब इसकी मार्केटिंग होगी तो तब ये बाहर जाएगा ना, पाकिस्तान तक कैसे पहुंचेगा?
जी, पाकिस्तान में ये है कि अब चूंकि मैंने ये काम सीखा भी है और मेरे US patents भी हैं, तो मेरा इरादा ये है कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान जाकर अपने इन्हीं प्रोफेसर्स के साथ और उन प्रोफेसर्स के साथ जिनके साथ मैं अभी कोलैबोरेशन कर रहा हूँ उनके साथ कोलैबोरेशन जारी रखूंगा. तो ये एक बहुत अच्छा मतलब डायरेक्शन मुझे नजर आती है कि ना सिर्फ ये बल्कि इस प्लेटफॉर्म को मैं और भी एक्सटेंड आगे करना चाहूंगा. तो अगर कोलैबोरेशन होगी तो हम इसी चीज को उधर भी यूज कर सकते हैं पाकिस्तान में.
तो अहमद एहसन नवाज, हमारी गुफ्तगू अभी जारी है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, तो ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान से आला तालीम के लिए यहाँ अमरीका आने वाले 2 फुलब्राइट स्कॉलर्स अहमद एहसन नवाज और आबिस हैदर जाफरी. दोनों का ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से और दोनों यहाँ अमरीका की पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए आए हैं. अहमद एहसन नवाज बायो फंक्शनलाइज्ड इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स या बायो नेम्स में अपनी डॉक्टरेट मुकम्मल कर चुके हैं और वो ब्लड टेस्ट का एक ऐसा आला इजाद करके पाकिस्तान लौट रहे हैं जो मौजूदा आलात की निस्बत इंतहाई छोटा और इंतहाई सस्ता है, जिसे आम आदमी भी किसी डॉक्टर की मदद के बगैर बआसानी इस्तेमाल कर सकेगा. हमारे मेहमान आबिस हैदर जाफरी न्यूरोलॉजी में मोटर कंट्रोल पर रिसर्च में मास्टर्स की 2 साल तालीम का आगाज कर रहे हैं
और वो पहले पाकिस्तानी होंगे जो फुल ब्राइट प्रोग्राम के तहत मोटर कंट्रोल पर अमेरिका में रिसर्च करेंगे। हमारे मेहमानों के तस्वीरी तारुफ और इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेजेस पर सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/हरदम रवां है जिंदगी और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के प्रोग्राम में इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं अहमद एहसन नवाज से, जो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से अपनी 4 साल की डॉक्टरेट मुकम्मल करके अब पाकिस्तान वापसी के सफर का आगाज करने वाले हैं। तो अहमद एहसन नवाज, ये बताइए कि इससे पहले आप पाकिस्तान में क्या कुछ पढ़कर यहाँ पर आए थे?
पाकिस्तान में मैंने मटेरियल साइंस किया था गुलाम साह खान यूनिवर्सिटी से, जो कि टोपी सवाबी में है। वहाँ पर मैंने मटेरियल साइंस किया था और मेरा जो काम था वो मेटल्स में था। मेटल्स में जो इससे मुख्तलिफ है, काफी मुख्तलिफ है, लेकिन यह है कि बाहर आकर मुझे ये एहसास हुआ कि हमारा चूंकि मुल्क है वो अभी हम डेवलपिंग कंट्री की दौड़ में शामिल हैं उस लिहाज से, और चूंकि गुर्बत है हमारे मुल्क में, तो हमें ऐसी चीजों की जरूरत है जो कि मैं अपना पहला नॉलेज और आगे जो अच्छे इधर यहाँ पे टॉप प्रोफेसर हैं उनसे जो है नॉलेज हासिल करके, तो इस डायरेक्शन में जो है ना वो हमारे मुल्क को जरूरत है। और ये मैं चाहता हूँ कि मैं वापस जाकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँ और साथ साथ जो है ये काम भी जारी रखूँ।
तो वहाँ भी पाकिस्तान में भी आपको पढ़ाने का मौका मिला?
पाकिस्तान में मुझे पढ़ाने का मौका नहीं मिला। मैं ग्रेजुएशन जब मैंने की 2006 में गुलाम साह खान यूनिवर्सिटी से, उसके बाद फौरन मुझे यूरोपियन यूनियन का स्कॉलरशिप मिल गया था, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा, जिस तरह अमेरिका का बड़ा स्कॉलरशिप फुलब्राइट है, फिर यूरोप का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप इरास्मस मंडस है, वहाँ उसके बेस पर मैं यूरोप चला गया था। पहला साल मैंने मास्टर्स का फ्रांस में गुजारा और दूसरा साल जो है वो जर्मनी में गुजारा, जहाँ पर मैंने अपना थीसिस भी किया।
तो उसके बाद फिर आपको यह फुलब्राइट मिल गया?
जी बिल्कुल।
तो आप मुसलसल 2006 से पढ़ रहे हैं?
हाँ जी, मुसलसल 2006 से पढ़ रहे हैं, बल्कि अलबत्ता 2006 और 7 के दरमियान मुझको तकरीबन 6 से 8 महीने सऊदी अरब में जॉब करने का भी मौका मिला, लेकिन जॉब के दौरान मैंने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया कि मुझे अभी जॉब पर नहीं जाना है, मुझे आगे पढ़ना है, क्योंकि ये जो है सिलसिला ये मैं इस अभी मुनक़िता नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था एक दफा कंप्लीट पढ़ाई हो जाए, उसके बाद मैं इस मतलब फील्ड में पूरी तरह उतरूं।
फुल ब्राइट में ये सहूलत भी है कि आपको एक तरह से जॉब भी साथ साथ ही समझिए कि इतना मिल जाता है कि आपका गुजारा भी होता रहता है, आपको जरूरत नहीं पड़ती कि आप मुलाजमत करें।
जी बिल्कुल, ये तो मतलब अल्लाह ताला की मेहरबानी भी है, और पाकिस्तान के जो मतलब यूएस गवर्नमेंट के साथ यूएसएड के थ्रू ये प्रोग्राम फुल ब्राइट है पाकिस्तान का, ये दूसरे मुल्कों के मुकाबले में इट्स द बिगेस्ट प्रोग्राम फॉर फुल ब्राइट स्कॉलर्स। इसमें बहुत अच्छा मतलब सिस्टम रहता है कि आपको मतलब कोई मुलाजमत की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, अमेरिका में बैठे हुए आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई पे रिसर्च पे तवज्जो कर सकते हैं पूरे 4 से 5 साल, पूरा आपको मतलब जो है सहूलतें मिलती हैं।
पाकिस्तान अगर वापस लाजमी है आपका जाना इस स्कॉलरशिप के बाद?
मैं अपने खुद से पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, उसकी वजह यह है कि जो मैंने इल्म यहाँ पर हासिल किया है अगर मैं पाकिस्तान जाके इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा तो जो मैंने इल्म हासिल किया है, जो मेरे मुल्क ने मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया है, मुझको वो वापस जाके पे करना है। एक अंदर से दिल से भी ख्वाहिश एक निकलती है, तो मैं तो वापस जाकर अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। मैं आता जाता रहना चाहता हूँ, उसकी वजह यह है ताकि मैं जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है कॉन्फ्रेंसिस के जरिए से मैं अपना कॉन्टेक्ट रखना चाहता हूँ इन लोगों से, ताकि एक अच्छा रबता कायम रहे दोनों मुल्कों के दरमियान रिसर्च के हैसियत से। तो मैं यहाँ पर यूरोप से हर जगह से अपने, बल्कि मेरे जो पुराने सुपरवाइजर्स हैं जर्मनी वगैरह में और फ्रांस में, उनसे भी मेरा कांटेक्ट है अभी, और उनकी उसकी वजह यही है कि हमने मिलकर बहुत अच्छा काम उस वक्त भी किया था, और ये एक रबता हमेशा से रहना चाहिए और ये पॉजिटिव है मेरे ख्याल से दोनों मुल्कों के लिए।
अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में ये शोभा तो मौजूद ही नहीं है जो आपने यहाँ पर पढ़ा, वो मौजूद है वहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी में वो शोभा?
मैंने काफी सारे लोगों से रबता किया और इंटरनेट के जरिए मैं सर्च कर चुका हूँ कि माशाल्लाह ऐसा काम पाकिस्तान में छोटा लेवल है लेकिन हो रहा है, और मैं चाहूंगा कि मैं जाकर वहां पर इसको और एक्सपेंड करूं। पाकिस्तान में नस्ट में बिल्कुल थोड़े लेवल पे ये काम हो रहा है, लेकिन लम्स में काफी अच्छा लेवल पे ये काम हो रहा है, और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ ये पियास जो है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर काफी अच्छा काम हो रहा है इसी सिलसिले में। अगर हम मतलब मैं वापस जाऊंगा तो इंशाल्लाह मुझे ऐसी काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि मैं अपना काम जारी रखूं। ना सिर्फ जारी रखूं बल्कि काफी इंशाल्लाह अच्छी कोलैबोरेशंस की भी मौके मिले।
आपने अपने कल्चर को इन तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया?
अपने कल्चर को हमारी कुछ एक्टिविटीज होती है, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन है यहाँ पर, PSA कहते हैं उसे, तो वहाँ पर हमारी एक्टिविटीज होती है जहाँ पर 14 अगस्त को या इस तरह के पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उसमें हम मतलब आसपास के लोगों को, कुछ दोस्तों को इनवाइट करते हैं और कुछ उनसे शेयर करते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान है उसमें क्या कल्चर होता है। लोकल ड्रेसेस भी हम पहनते हैं, तो मुझे मतलब एक्सटेंसिव लेवल पर उसका टाइम नहीं मिला चूंकि मेरा PhD में काम बहुत ज्यादा टाइम मांगता था, लेकिन जहां तक हो सका मैंने उसको मतलब प्रमोट करने की बिल्कुल कोशिश की
है। और यहाँ के कल्चर की जब आप जा रहे हैं तो कौन सी अच्छी बातें अपने साथ लेकर जा रहे हैं?
मैं एक तो जो मतलब मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट की है चीज इनकी, वो है वक्त की कदर। अगर हम वक्त की कदर अपने साथ ले जाएं यहाँ पर और अपने कल्चर में वो किसी तरह इंड्यूस कर सके ना, तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और मैं चाहूंगा कि जो मैंने यहाँ से सीखा है, ना सिर्फ रिसर्च और रिसर्च करने का तरीका, वो इंशाल्लाह मैं जाके छोड़ूंगा नहीं और इसी तरह इंशाल्लाह कायम रखूंगा।
और यहाँ आपके इर्द गिर्द के लोग क्या कहते हैं कि आपने उनके लिए क्या छोड़ा है, पाकिस्तान की कौन सी अच्छी बातें उन तक पहुँचाई हैं?
मेरा ख्याल है कि उनको ये थोड़ा सा जो मिसकंसेप्शन होता है कि थोड़े से मतलब गुस्से वाले लोग हैं, वो कोशिश की है अपनी तरफ से खत्म करने की और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह उसमें कामयाब भी रहूं थोड़ा बहुत।
यानी आपने कोशिश की है कि पाकिस्तान के बारे में जो इमेज यहाँ पर थोड़े सा मनफी है उसको बेहतर बनाया जाए आपके अपने किरदार से, आपकी अपनी खूबियों से, कि पाकिस्तानी ऐसे होते हैं जैसा कि एहसन नवाज है।
बहुत शुक्रिया।
अब आप जब वापस जा रहे हैं पाकिस्तान में तो क्या फील कर रहे हैं कि आप जब एक अहमद एहसन नवाज जब यहाँ पर आया था उस एहसन नवाज में और वो एहसन नवाज जो वापस जा रहा है, क्या फर्क है?
फर्क तो काफी है जी। फर्क तो ये है कि जब मैं आया था तो मुझे मतलब उन प्रॉब्लम्स को जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त, मैं उनको उस डायरेक्शन से नहीं देख सकता था जो कि अब मतलब मैं एक रिसर्च एनवायरनमेंट में बैठकर देख सकता हूँ। और मैं मतलब खुशकिस्मत रहा हूँ कि मैं उस डायरेक्शन में कर सका हूँ। इस डायरेक्शन में हमारे मुल्क को बहुत जरूरत है, वो हेल्थ केयर है। तो और चूंकि हमारा मुल्क जो है अभी तरक्की याफ्ता नहीं है, तरक्की मतलब अभी करने की दौर में है, तो हमें इस चीजों की बहुत जरूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस है अप्रोच में, जिस तरह मैं चीजों को देख सकता हूँ, जिस तरह खासतौर पे प्रोजेक्ट हैंडलिंग जो है वो एक आपको एक अच्छी रिसर्च एनवायरनमेंट वो सही सिखाती है। तो वापस जाकर अभी मैं, मेरा यही प्रोग्राम है कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब करूँ, ना सिर्फ ये बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेशन करूँ डायरेक्ट, और मतलब इन दोनों जो मतलब ये इदारे हैं, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल्स, इनको करीब लाया जाए। क्योंकि जब तक आप ऐसा काम नहीं करेंगे जिसका डायरेक्ट सोसाइटी पर इम्पैक्ट हो, तब इमीडिएट उसका पॉजिटिव फायदा नहीं आपको पता चल सकेगा। और चूंकि ये मतलब हमारे वो एक बड़े मशहूर राइटर हैं इशफाक अहमद, वो ये कहते हैं कि आने वाला दौर जो है वो इस वक्त इंसान का दौर है। इंसान के बारे में आप जानेंगे कि क्या इंसान के अंदर क्या पाया जाता है। मैं भी यही समझता हूँ कि अगर आप अपने आप को ज्यादा जानेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर पता चलेगा कि जिंदगी की क्या सीखते हैं, या कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस लिए पैदा किया,
उसकी क्या सलाहियतें हैं, उसके अंदर क्या कुव्वतें हैं और क्या उसकी कमजोरियां हैं, और किस तरह उन कमजोरियों और ताकतों के साथ उसने आगे बढ़ना है।
जी बिल्कुल।
कितना कंट्रीब्यूशन है आपको आगे बढ़ाने में आपकी फैमिली का, अगर मैं एक ही सवाल पूछूं आपसे तो?
मैं तो यही कहूंगा कि 200% उन्हीं का ही है कंट्रीब्यूशन सारा।
अच्छा। लेकिन जाहिर है कि आपने मेहनत इतनी की है और उनको वो चीज लौटाई है, जब उन्होंने आपसे उम्मीदें बांधी तो आपने उनको पूरा भी किया। यहाँ पर आकर खासतौर पर पाकिस्तानियों को खाने पीने के प्रॉब्लम्स भी पेश आते हैं, तो आपने किस तरह 4 साल क्या करते रहे, खाने पीने का क्या अरेंजमेंट रहा आपका?
जी असल में ऐसा है कि ये खास तौर पे जहाँ पर मैं रहता हूँ स्टेट कॉलेज में, पेंसिल्वेनिया में, स्टेट कॉलेज एक बहुत छोटी सी जगह है जहाँ पर खाना इतनी आराम से, जो हम मतलब हलाल फूड है वो इतनी आराम से नहीं मिलता। इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं दो, उनसे मिल जाता है, लेकिन मस्जिद वगैरह से हलाल फूड मिलता है, वहाँ से मैं ले लिया करता था। लेकिन मैं जाती तौर पर कोई बहुत ज्यादा खाने का शौकीन नहीं हूँ, इसलिए मुझे जो भी मिल जाता है मैं खा लेता हूँ। तो मैं मतलब वेजिटेबल्स पे या उस पर गुजारा कर लेता हूँ जब भूख लगती है, तो काम के दौरान तो पता भी नहीं चलता कितना टाइम गुजर गया।
तो खुद पकाना नहीं सीखा यहाँ पर आकर?
मेरी प्रायोरिटी नहीं कभी भी रही खाने की, तो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, लेकिन ये कि कभी भी 4 साल में कुछ इस तरह किया नहीं कि मैं कह सकूं कि मैं एक अच्छा कुक भी बन गया।
ठीक है जी, कुक नहीं बने, लेकिन माशाल्लाह आपने जो कुछ कुक किया है और उस वो वाकई बहुत सारे लोगों के जो मसाइल हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हल करेंगे, और आइंदा आपके जो इरादे हैं वो माशाल्लाह और भी क्या कहना चाहिए कि बहुत ही अच्छे हैं, कि आप हर आम आदमी को उसको अपने खून को टेस्ट करने का एक आला देंगे, ताकि वो जाने अपने आप को, और अपने आप को जानने के बाद अपनी बीमारियों को दूर करे और अपने आप को एक सेहतमंद इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारे। कोई पैगाम इस वक्त, अब तो आप जा ही रहे हैं, अब सारे पैगाम तो आप खुद प्रैक्टिकली जाकर लोगों को देंगे, लेकिन जो लोग हमारा इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं और पूरी दुनिया में आपको सुन रहे हैं, उनको एज पाकिस्तानी यूथ आप क्या पैगाम देंगे, खासतौर पर जो पाकिस्तान के नौजवान हैं?
मैं ये कहना चाहूंगा कि एक सबसे पहली बात, मैं दो या तीन शायद बातें करूं। एक पहली बात तो यह कि हम सबको कौम की हैसियत से एक तो वक्त की कदर है ना वो जाननी है, वक्त गुजरा हुआ कभी वापस नहीं आता, हमें उसकी कदर जाननी है। और दूसरी बात यह है कि एक चीज है रिलीजियस पेशेंस, ठीक है, वो हमारे पाकिस्तानियों में अब कम है, उसको हमें अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करनी है।
तो अब ये है कि अब आपका जो तालीमी सफर है आप डेफिनेटली आपने खत्म कर दिया?
अभी फिलहाल तो ये है कि मैं पाकिस्तान जाके इंशाल्लाह ज्वाइन करूंगा यूनिवर्सिटी, लेकिन ये तालीमी सफर मेरा ख्याल है कभी भी नहीं खत्म होता, क्योंकि मैं बहुत चीजें सीखना चाहता हूँ, जो कि जिस तरह अब मैं चाहता हूँ कि कोई और डायरेक्शन में भी मैं साथ साथ काम करता रहूँ, जिस तरह मैथमेटिक्स की डायरेक्शन है वो मैंने समझा है कि यहाँ पर जो है ना उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं इंशाल्लाह जारी रखूंगा, और फ्यूचर में मुझे कोई पोस्ट डॉक्टरेट मिली तो मैं इंशाल्लाह वो भी कंटिन्यू करूंगा अपना पाकिस्तान जाकर।
तो कुछ और अचीवमेंट्स जिनका आप इस वक्त जिक्र करना चाहें इस पूरे 4 साल के दौर में जो आपने यहाँ अमरीका में गुजारा?
उसमें मुझे हर साल यहाँ पर अपना रिसर्च में प्राइज मिलता रहा है, अपने डिपार्टमेंटल प्राइज मिलता रहा है, वो तकरीबन काफी अच्छा होता है, वैसे $500 पर प्राइज होता है वो, तो पिछले 4 साल में मुझे हर साल मिलता रहा है माशाल्लाह।
बेहद शुक्रिया अहमद एहसन नवाज। प्रोग्राम को समेटने का वक्त हुआ। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान थे पाकिस्तान से आला तालीम के लिए यहाँ अमरीका आने वाले 2 फुल ब्राइट स्कॉलर्स अहमद एहसन नवाज और आबिस हैदर जाफरी। दोनों का ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से और दोनों यहाँ अमरीका की पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए आए हैं। अहमद एहसन नवाज बायो फंक्शनलाइज्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स या बायो नेम्स में अपनी डॉक्टरेट मुकम्मल कर चुके हैं और वो ब्लड टेस्ट का एक ऐसा आला इजाद करके पाकिस्तान लौट रहे हैं जो मौजूदा आलात की निस्बत इंतहाई छोटा और इंतहाई सस्ता है, जिसे आम आदमी भी किसी डॉक्टर की मदद के बगैर बआसानी इस्तेमाल कर सकेगा। हमारे मेहमान आबिस हैदर जाफरी न्यूरोलॉजी में मोटर कंट्रोल पर रिसर्च में मास्टर्स की 2 साला तालीम का आगाज कर रहे हैं और वो पहले पाकिस्तानी होंगे जो फुल ब्राइट प्रोग्राम के तहत मोटर कंट्रोल पर अमेरिका में रिसर्च करेंगे। हमारे मेहमानों के तस्वीरी तारुफ और इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेजेस पर सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/हरदम रवा है जिंदगी और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं टेलीफोन पर पेंसिल्वेनिया से, तो पहले तफसील से बात करेंगे पाकिस्तान से यहाँ अमरीका आने वाले आबिस हैदर जाफरी से, और उसके बाद बात होगी अमरीका से तालीम मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान जाने वाले फुल ब्राइटर अहमद एहसन नवाज से। यास्मीन जमील को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।